यशोदानन्दन व्रज जन यशोदानन्दन व्रज जन यमुना तीरावन यमुना तीरावन जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन धारी यमुना तीरावन धारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev.
Jai Om Vishnupad Paramahansa Privajakacharya Ashtotar Shata Shri Srimadhi Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अवच्यमाना जननी बृहच्चला, अन्वच्यमाना जननी बृहच्चला, श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा। श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा। जवेन विस्रसित केश बंधनत् जवेन विस्रसित केश
बंधनत्
चुत प्रसूनानुगति परामृश चुत प्रसूनानुगति परामृश जमाना जननी बृहच्चला शोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा जवेन विस्रसित केश बंदना चुत प्रसूनानुगति परामृशा
Yeah.
अनवंचमाना, तेजी से कृष्ण का पीछा करती हुई, जननी माता यशोदा, बृहद चलत श्रोणी भर आक्रांत गति ही। अपने बड़े बड़े स्तनों के भार से बोझिल होने से थक गई, जिससे उसकी चाल मंद पड़ गई, छोड़ गया। सुमध्यमा, अपनी पतली कमल के कारण जवे न तेजी से जाने के कारण विंस्रसित केश बंधना, झिले हुए केश सज्जा से चुत प्रसन्न अनुगति ही, उनके पीछे पीछे फूल गिर रहे थे। राम ऋषत, अंत में कृष्ण को पकड़ लिया। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण का पीछा करते हुए भारी स्तनों के भार से बोझिल पतली कमर वाली माता यशोदा को अपनी चाल मंद करनी पड़ी। तेजी से पीछा करने के कारण उनके बाल शिथिल पड़ गए थे और उनमें लगे फूल उनके पीछे पीछे गिर रहे थे। फिर भी वे अपने पुत्र कृष्ण को पकड़ने में सफल हुई। तात्पर्य, यद्यपि योगी जन कठिन तपस्या द्वारा कृष्ण को पकड़ नहीं पाते, किंतु इतने अवरोधों के बावजूद माता यशोदा अंततः कृष्ण को पकड़ पाने में समर्थ हो गई। योगी तथा भक्त में यही अंतर है। योगी जन कृष्ण के तेज में प्रवेश तक नहीं कर पाते। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, ब्रह्म संहिता में एक श्लोक बताया गया है, उस तेज में लाखों ब्रह्मांड रहते हैं, किंतु योगी तथा ज्ञानी जन अनेकानेक वर्षों तक कठिन तपस्या करने पर भी उस तेज में प्रविष्ट नहीं होता थे, जबकि भक्तजन मात्र प्रेम तथा स्नेह द्वारा कृष्ण को बंदी बना सकते हैं। माता यशोदा यहां ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। अतः कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि जो उन्हें पकड़ना चाहता है उसे भक्ति करनी चाहिए। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम्। भक्तजन तो कृष्ण लोक में भी आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, किंतु अल्पज्ञ योगी तथा ज्ञानी जन अपने ध्यान के द्वारा कृष्ण के पीछे दौड़ते रहते हैं। यदि वे कृष्ण तेज में प्रवेश भी करते हैं तो नीचे गिर पड़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदाधिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कृष्ण का पीछा करते हुए भारी स्तनों के भार से बोझिल पतली कमर वाली माता यशोदा को अपनी चाल मंद करनी पड़ी। तेजी से पीछा करने के कारण उनके बाल शिथिल पड़ गए थे और उनमें लगे फूल उनके पीछे पीछे गिर रहे थे। फिर भी वे अपने पुत्र कृष्ण को पकड़ने में सफल हुई। हरे कृष्ण। हम सब लोग कई दिनों से ये अत्यंत सुमधुर इस लीला दामोदर लीला दामोदर दम यानी कि रस्सी और उदर जिसका उदर रस्सी से बांधा हुआ है ऐसे भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा के साथ चलती हुई इस लीला को श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ये लीला बहुत उत्साह से और आनंद से परीक्षित महाराज को बता रहे हैं और परीक्षित महाराज भी बहुत अत्यधिक आनंद से उसको श्रवण कर रहे हैं। और वही कृष्ण जो परम सत्य है जिनको योगी जन उनके मन के वेग से मन का वेग बहुत होता है ज्यादा होता है लेकिन मन के वेग से जो उनके पीछे भागते हैं तो यहां पहुंच नहीं सकते। यहां तक कि उनके नाखून के आभा भी उनको नहीं दिख सकते। ज्ञानी जन केवल उनके तेज का दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण ऐसे परम सत्य भगवान वही परम सत्य जिन्होंने तीन ही पगों में दो ही पैरों में सारा विश्व सारी सृष्टि को नाप लिया था वही परम सत्य जो राम के रूप में रावण की छाती में जो अमृत कुंभ उसको भेजते हैं वही परम सत्य जो हिरण्यकशिपु जो कि सारे देवताओं को भयभीत करता था अपने भ्रुकुटों को उठाकर लेकिन उस हिरण्यकशिपु को एक साधारण ऐसे कुछ जीव के तरह उनकी छाती उन्होंने भेज दी। इसी परम सत्य यहां पर माता यशोदा जो कि केवल एक गृहिणी है एक गोपी है उसके डर से यहां भाग रहे हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। तो हम समझ सकते हैं कि इस लीला का महत्व कितना है कि जिनको महान व्यक्ति हिरण्यकश्यप भी महान था रावण भी महान था वो कुछ नहीं कर सके जिनके पीछे अनेकों योगी बहुत काल से भाग रहे हैं शिव ब्रह्मा जिनके दर्शन के लिए ललायित होते हैं जो साक्षात मृत्यु के लिए भी भय है ऐसे परम सत्य भगवान यहां यशोदा मां की भक्ति से पराजित है। ऐसी लीलाओं का श्रवण करने से हम शुद्ध हो जाते हैं लेकिन ऐसी लीलाओं का श्रवण हमें आचार्यों से करना चाहिए। हमारी कोई योग्यता नहीं कि हम ऐसी लीलाओं के बारे में बात करें लेकिन फिर भी क्योंकि हम आचार्यों की वाणी को दोहरा रहे हैं इसलिए हमारा भी शुद्धिकरण होता है। तो इस श्लोक में खास करके जब माँ यशोदा इस प्रकार से कृष्ण को पकड़ रही है तो प्रभुपाद यहां साफ साफ बता रहे हैं कि जो योगी जन है, ज्ञानी जन है, ये कभी भी कृष्ण के पास पहुंच नहीं सकते। यहां पर भक्ति का ये जो श्रेष्ठतम स्तर है उसको दिखाया गया है, उसकी श्रेष्ठता को दिखाया गया है। परम सत्य को अनेकों लोग अलग अलग प्रकार से देखते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। उसी परम सत्य को कोई लोग एक तेजोमय निराकार ऐसे वस्तु के माध्यम से देखते हैं, ब्रह्म ज्योति, ये ज्ञानी लोग होते हैं। जो योगी है उसको परमात्मा के रूप में देखते हैं, जो कि हर जीव के हृदय में बैठा है। और जो भक्त है उसी परम सत्य को भगवान, जो कि सारे ऐश्वर्य से पूर्ण है, ऐसे एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, ये ब्रह्मा जी का वर्णन है इसी परम सत्य का। तो इस परम सत्य को ज्ञानी हो, योगी हो या फिर भक्त हो, वो अपने अपने दृष्टि से देखते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि इसमें सर्वश्रेष्ठ भक्त है, एक भक्ति की महिमा है। यहां प्रभुपाद साफ साफ कह रहे हैं कि अगर ज्ञानी ब्रह्म तेज में विलीन भी होता है फिर भी वो फिर से गिर जाता है, उसको फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन भक्त जो है इसी जीवन में भक्ति का मार्ग अनुक्रमण करने से भगवान को बंदिस्त बना सकता है, क्योंकि माँ यशोदा यहां पर कर रही है। अर्थात माँ यशोदा ये नित्य पार्षद है भगवान के, लाजिनी शक्ति के स्वरूप है। पद्म पुराण में कहते हैं कि यही नंद यशोदा पहले कश्यप और आदिति थे, हमेशा ही वो माता पिता बनकर ही आते भगवान के। इसलिए ये कोई हमारे जैसे भक्त नहीं है जो कि साधना भक्ति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो इस संसार में आए हैं, हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए और भक्ति का महत्व क्या है इसको सिखाने के लिए एक भक्त का उदाहरण देते हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यशोदा माया दिखा रही है कि भक्त किस प्रकार से भगवान को प्रेम के कारण सहज ही प्राप्त कर सकता है। हम देखेंगे गीता में अर्जुन ये सवाल पूछते हैं भगवान को कि हे भगवान, आपने मुझे ये जो सारा विश्वरूप दिखाया है और बाद में आपने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया है और फिर आप अपने स्वयं के रूप में आए हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि असल में जो निराकारवादी है, जो आपके तेज के प्रति आकर्षित होते हैं, ये लोग ज्यादा श्रेष्ठ हैं कि जो लोग आपको इस स्वरूप में देखते हैं और आपकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, ये लोग श्रेष्ठ हैं? और भगवान किसी प्रकार का संदेह न रखते हुए साफ साफ बताते हैं कि जो अव्यक्ति की पूजा करते हैं उनसे कई अधिक गुना अच्छी तरह से मेरे भक्त मुझे पहचान सकते हैं। ये भक्ति की महिमा है, भगवान स्वयं इसके बारे में बोल रहे हैं। और यहां पर श्री प्रभुपाद या 18वां अध्याय का श्लोक बता रहे हैं, भक्ता माम विजानाति यावन यस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। यानी केवल भक्ति से ही मैं जाना जा सकता हूं, भगवान का स्वयं का यह निर्णय है, मैं केवल भक्ति से जाना जा सकता हूं और कोई उपाय नहीं है। आज हम श्रील मध्वाचार्य इनका तिरोभाव दिन मना रहे, जयंती, उनकी भी शिक्षाओं में यही बातें आती है। उन्होंने 9 प्रमुख शिक्षाएं हमें बताई, आज हम लीलाओं के बारे में बात नहीं करें, उनके उनकी जो शिक्षा है उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो क्या बताते हैं, पहली शिक्षा देते हैं कि केवल कृष्ण भगवान ही एकमेव पुरुषोत्तम है। कृष्ण इज ओनली सुप्रीम पर्सन विदाउट ए सेकंड। अभी हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इस प्रकार सारे जो निर्णय हैं, सारे सिद्धांत हैं, मध्वाचार्य से लिए गए हैं। असल में हमारा जो अचिंत्य भेदाभेद, जैसे मध्वाचार्य के तत्व को द्वैताद्वैतवाद कहते हैं, लेकिन हमारा जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुरस्कृत किया, इसका भी वर्णन श्री त्रिप्राद मध्वाचार्य के भागवत पर्य नाम के ग्रंथ में से आता है। जीव गोस्वामी ऐसे कहते हैं। तो उनकी शिक्षाएं क्या है, कृष्ण इज द ओनली सुप्रीम पर्सन विदाउट ए सेकंड। एकले कृष्ण, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, बाकी सब लोग उनके दास हैं। दूसरी शिक्षा है कि सारे वेदों का जो ज्ञान है, उन ज्ञान का, उस ज्ञान का एकमेव लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण। तीसरा उनकी शिक्षा है कि जो सत जगत है इसको सारे लोग, खास करके शंकराचार्य ने श्रीपाद मध्वाचार्य के पहले पूरे भारत में भ्रमण करके जो मायावाद है, इम्पर्सनलिज्म, इसका प्रचार किया था। और उसी प्रकार से मध्वाचार्य ने बाद में इसका खंडन करते हुए सारे भारत भर में भ्रमण किया था। तो वो क्या कहते हैं, ये जगत मिथ्या नहीं है, ये सत्य है। जो संसार दिख रहा है वो भी सत्य है, लेकिन ये सत्य, ये रियलिटी जो है ये टेम्पररी है, इसके लिए सत्य सत्य बोला है, बस इसका नाश होने वाला है। लेकिन जब हम यहां पर टेबल कुर्सी देख रहे हैं उसको हम असत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि तो सामने दिख रहा है, ये कोई स्वप्नावस्था नहीं है, केवल ये टेम्पररी है, इसका विनाश होने वाला है। तो यूनिवर्स इज रियल, सत्य। चौथी उनकी शिक्षा है कि ईश्वर, जीव और मैटर, यानी क्या बोल मैटर, प्रकृति, ईश्वर जीव और प्रकृति, इनके जो भेद है ये भी रियल है, ये भी सत्य है, इसको आप एक नहीं कर सकते। प्रकृति और जीव एक नहीं हो सकते हैं, जीव और भगवान एक नहीं हो सकते। जीव, पांचवा उनकी शिक्षा है, जीव ये बाय नेचर, स्वभाव से भगवान के दास होते हैं। जीवर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, हमारी फिलोसॉफी में जो जो हम बोल रहे हैं माध्वाचार्य के फिलोसॉफी से आता है। दो प्रकार के जीव होते हैं, जैसे हमने यहां देखा माँ यशोदा है, ये सब लोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो इल्यूजन यानी कि जो भ्रमित है, इस संसार से भ्रम पड़े हुए हैं, और दूसरे जो भ्रम के परे गए हुए हैं, लिबरेटेड। सातवां उनका मुद्दा था, मुक्ति का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना। मध्वाचार्य के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ज्यादा करके मुक्ति के बारे में हम लोग बोलते हैं तो मुक्ति मतलब क्या सोचते लोग, कि जो ब्रह्म ज्योति है उसमें विलीन हो जाना। लेकिन यहां पर मध्वाचार्य बता रहे मुक्ति का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना। जैसे हम श्री चैतन्य चरितामृत में देखते हैं, जब श्रीपाद सार्वभौम भट्टाचार्य ये जब भक्त बन गए, उन्होंने 7 दिन तक ये जो मायावाद है इसके बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु को कथन किया, और चैतन्य महाप्रभु 7 दिन तक सुनते रहे, एक शब्द भी नहीं बोले, और अपने चेहरे से ये भी उनको पता नहीं चल रहा था उनके चेहरे से कि इनको कोई समझ रहा है नहीं समझ रहा है। सातवें दिन जब उन्होंने पूछा कि भाई आप सुन तो रहे हो और मैं बोलते जा रहा हूं, लेकिन आपने कभी ये बताया नहीं कि आपको कुछ अड़चन आ रही है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वेदांत सूत्र जो है वो सूर्य के प्रकाश की तरह स्वच्छ है, लेकिन आपके जो बातें हैं उसको एक बादल की तरह ढक रहे हैं, इतना ही मैं कहना चाहता हूं। और भट्टाचार्य ने कहा फिर आप बताइए, और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सुंदर तरीके से भक्ति के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया, और भट्टाचार्य तुरंत ये देख पाए कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। भक्ति में आने के बाद भट्टाचार्य ने जब फिर से ग्रंथों को पढ़ना चाहा तो एक श्लोक श्रीमद् भागवतम का, उसमें मुक्ति पदे नाम का एक शब्द है, मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भक्त अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आनंद से भगवान के देन बोलकर स्वीकार करते हैं और उसमें जाते समय केवल भगवान को धन्यवाद देते रहते हैं, मुक्ति उनका हक है। लेकिन मुक्ति शब्द से भट्टाचार्य को बहुत घृणा आ गई, क्योंकि मुक्ति से उनका मतलब था उस निराकार में विलीन होना, तो उन्होंने उस शब्द को बदलकर श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रस्तुत किया और कहा भक्ति से पदाय भाग दाय भाग। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु कहेगी ऐसे नहीं है, यह मुक्ति शब्द का आप अर्थ जो ले रहे वो नहीं है। मुक्ति के शब्द का अर्थ क्या है यहां जो श्रीपाद माध्वाचार्य कह रहे हैं, मुक्ति मीन्स अटेनिंग लोटस फीट ऑफ कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के पद कमलों को प्राप्त करना, ये मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ अर्थ है। आठवीं शिक्षा है प्योर डिवोशन, शुद्ध भक्ति, यही एक मुक्ति का मार्ग है, एकमेव मार्ग है शुद्ध भक्ति। और नौवा, इस सारे सत्य को कैसे पहचाना जाए, तो उन्होंने कहा तीन प्रमाणों से हम सत्य को खोज सकते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इस प्रकार से मध्वाचार्य ने ये सारी जो भगवान को प्राप्त करने की पद्धति है, विधि है, उसे हमने समझाया, और श्री चैतन्य महाप्रभु और आने वाले सारे आचार्यों ने इन्हीं पर चीजों को, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन्होंने इन्हीं चीजों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और खास करके श्री चैतन्य महाप्रभु हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए सिखाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण भक्त के रूप में आते हैं, और क्या कहते हैं, वेदों का अध्ययन करने को नहीं कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जो व्रजवधु हैं, गोपियां हैं, उनके चरण कमलों पर, उनके पद चिन्हों पर चलो। आराध्य भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु। व्रजवधु यानी गोपियों की जो उपासना पद्धति है वो सर्वश्रेष्ठ उपासना पद्धति है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है। महाजनो ये न गता सकम, तो यहां पर महाजन कौन है, माया यशोदा, वो दिखा रही है भगवान को कैसे प्राप्त करना चाहिए, भगवान को कैसे पकड़ा जाता है। हमारे आचार्य बताते हैं ये लीला का वर्णन अलग अलग प्रकार से करते हैं, कि यहां पर वर्णन आता है कि मां यशोदा जब भाग रही है तो उनके फूल वहां पर गिर रहे हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि आध्यात्मिक संसार में फूल पत्ता सब लोग सचेतन होते हैं, पूर्ण चेतना के विकसित होने के कारण वो बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो बालों के ऊपर धारण के हुए जो फूल है वो जब देख रहे हैं कि मां यशोदा भगवान को पकड़ने जा रही है, तो वो सोच रहे हैं कि चलो हम भी उनके ये ऐसी व्यक्ति है जो भगवान को पकड़ सकती है, इनकी योग्यता ऐसी है, हम कौन होते हैं उनके सिर के ऊपर बैठने वाले, इसलिए स्वयं से वो उनके पैरों में गिर जाते हैं, ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार से ये लीला का वर्णन आज तक हमने सुना, आपने भी सुना होगा। और ये मधुर लीला हमें बहुत प्रोत्साहन देती है, क्योंकि हम बहुत भाग्यवान है कि हम भक्ति के मार्ग में आए हुए हैं। इस भक्ति के मार्ग से हम आसानी से भगवान श्री कृष्ण को पकड़ सकते हैं, जिनको कोई पकड़ नहीं सकता, उनके आकार से पकड़ नहीं सकता, दो पैरों में वो सारी सृष्टि को नाप सकते हैं, तो उनको कैसे पकड़ सकते हैं। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष सब लोगों ने पकड़ना चाहा उनको, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता। लेकिन ऐसे व्यक्ति भक्त के तुरंत हाथ में आ जाता है। यहां तक कि हमारे एक आचार्य भक्ति बिल्व मंगल ठाकुर, बिल्व मंगल ठाकुर क्या बोलते हैं, वो भगवान को चैलेंज करते हैं कि आपको मैंने अपने मेरे हृदय में अभी पकड़ लिया है, आपकी हिम्मत है तो बाहर आकर देखिए। हम भगवान के भक्त कैसे भगवान को चैलेंज कर रहे हैं कि आपकी हिम्मत है तो बाहर आके दिखाइए, मैंने आपको अभी हृदय में पकड़ लिया है। ये भगवान के भक्तों की महानता है, ये भक्ति की महानता है। तो आज हम ये लीला सुनने के कारण हमारा हृदय से हमारा हृदय स्वच्छ होता है। लेकिन लीलाओं का श्रवण करने से, श्रवण कीर्तन करने से जैसे हमारी भक्तिता बढ़ती है, उसी के साथ साथ हृदय के अंदर अलग अलग प्रकार के जो अनर्थ हैं उनकी विषैली ऐसी वल्लियां भी बढ़ती हैं। खास करके भक्ति की ऐसी महानता सुनने के बाद, क्योंकि हम अभी भी अहंकार के वशीभूत हैं, हमारे जीवन से अभी अहंकार छूटा नहीं है, ऐसी लीलाओं सुनने के बाद में हम कभी कभी, खास करके ये बहुत सावधान होना चाहिए भक्तों को, भगवान को हम क्योंकि तो माँ यशोदा भी पकड़ सकती है, भक्त पकड़ सकता है, इसलिए हम लोग उसको बहुत साधारण तरीके से समझते हैं। भगवान कृष्ण को हम बिल्कुल सस्ता समझते हैं, और उसके कारण हमारी दुर्गति सहज भाव की तरफ होती है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो वृंदावन में रहते थे अपनी परिक्रमा के समय अक्रूर घाट में, उसी को लोग प्रतिदिन उनको मिलने को आते थे, पर एक दिन कई ब्राह्मण उनको मिलने के लिए आए, उनको प्रणाम करके उन्होंने कहा कि आप जानते हैं आप आने से वृंदावन का भाग्य बहुत बढ़ गया है, और लोगों को आजकल यमुना में हर रात को भगवान के दर्शन होते हैं, आप भी चलिए भगवान को देखने के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन बातों को टाल दिया। दूसरे दिन और लोग आए, उन्होंने भी बताया कल हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण यमुना में कालिया के फन पर बैठकर खड़े होकर नाच रहे हैं। तो दूसरे दिन उनके जो सेवक थे बलभद्र भट्टाचार्य, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को एक विनती की कि क्या मैं रात को जाके कृष्ण को देख के आ सकता हूं, हर रात आ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको थोड़ा सा चांटा मारा प्रेम से, और कहा कि देखो कौन से शास्त्र में लिखा है कि कृष्ण इस प्रकार से अवतरित होने वाले हैं। कृष्ण ऐसे अवतार लेने वाले नहीं, कलयुग में ऐसा कोई अवतार नहीं है। बलभद्र भट्टाचार्य समझ गए और चुप रहे, और उसी दोपहर को बहुत ब्राह्मण फिर से आए और वो कहने लगे कि हमने कृष्ण को देखा, लेकिन वो जो कल देखा था वो सही कृष्ण नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु मुझे क्या था वो? बोले एक मछुआरा रात को दिया लेकर अपने नाव पर मछली पकड़ने जाता था और नाव डोलती थी और उसके साथ उसका दिया भी डोलता था, तो सब लोग सोचते ये कृष्ण है, मछुआरा कृष्ण है और वो इस बाग के फन के ऊपर जो दिया है जो मणि है उसके प्रकाश के ऊपर वो दिख रहा है। ऐसे केवल मन से वो सोच रहे हैं और भ्रमित है, लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन फिर भी हमें एक विश्वास हो गया कि हमने कृष्ण को देखा है क्योंकि आप ही कृष्ण हो। अर्थात वो सत्य बात कह रहे थे लेकिन उनके हृदय में उस प्रकार का विचार नहीं था भक्ति का। वो भी सोच रहे थे कि ये सन्यासी है इसलिए वो साक्षात नारायण है, ये मायावाद है। चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया कि ऐसे नहीं, जीव कभी भी नारायण बन नहीं सकता, जीव हमेशा जीव रहेगा और नारायण हमेशा जीव नारायण रहेंगे। श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य प्रभुपाद के अंतिम दिनों में प्रभुपाद को बहुत ज्यादा बीमारी थी, बहुत कफ उनके हृदय में छाती में बड़ा भरा हुआ था, तो बार बार उनको थूकना पड़ता था, डूलिंग बोलते हैं इसके, उनके मुख से जो फेन जैसे आता था। तो कोई भक्तों ने बोलना शुरू कर दिया कि प्रभुपाद इज इन एक्सटेसी, उनके मुंह से फेन आ रहा है, ये एक एक्सटेसी का या फिर बहुत ही आध्यात्मिक उन्माद का एक लक्षण है। तो जाकर कमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद को बताया तो प्रभुपाद कहने लगे ये सारे लोग सहज्य है, तो उनको उनका गलती मान्य हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं भगवान को या भगवान के भक्त को जब हम सस्ता समझते हैं, साधारण समझते हैं, तो इस प्रकार के गलती कर बैठते हैं। और दूसरी प्रकार की गलती जब हम अपने आप को बड़ा मानते हैं, तो भगवान को सस्ता मानना और दूसरा अपने आप को भगवान की तरह बड़ा मानना। इसके कारण हम लोग, क्योंकि हम भक्त हैं बाहर से भक्ति के मार्ग में हैं, हम लोग ये समझते कि अभी मैं भी कृष्ण को पकड़ सकता हूं, जैसे मां यशोदा ने पकड़ा। बात सही है कि आप भी कृष्ण को पकड़ सकते हो, इसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन अब नहीं पकड़ सकते, अभी आपको कृष्ण नाम को ही पकड़ना है, उसको पकड़ने का प्रयास करो। भगवान के नाम को भी हम लोग पकड़ नहीं पाते, जब सवेरे सवेरे आते हैं चैंटिंग करते हैं तो नाम यहां वहां भागते रहता है, पता ही नहीं चलता कब सोला माला होगी, सोला माला होने के बाद भी पता चलता है अरे अभी तक भगवान का नाम ही दिया नहीं। ऐसे दिन ब दिन होते रहता है, सालों साल गुजरते रहते हैं, फिर भी हम लोग सोचते हैं अभी तक नाम क्यों नहीं हुआ। हम लोग नाम को ही नहीं पकड़ सक रहे हैं, अर्थात जब नाम को पकड़ पाएंगे कृष्ण को पकड़ पाएंगे। इसलिए यहां पर जो योगियों का ज्ञानियों का वर्णन आ रहा है, देवताओं का वर्णन है, भक्ति में ये सारी चीजों को कोई महत्व नहीं है। किसी भी देवता की पूजा, किसी योगी की, योगी के पीछे जाना, ये कोई इसका कोई महत्व नहीं है। जो सिद्धियां प्राप्त होती है वो भी अगर कोई आके भक्त को देता है तो भक्त उसको नकार देता है, हमने सुना है। तो उसके कारण हम योगियों को, ज्ञानियों को, सर्वसाधारण व्यक्तियों को हम उनकी निंदा करना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि हम लोग अभी भक्त बन गए हैं। एक अनर्थ है, ये दाम्भिकता है, क्योंकि हमारे जीवन में भी अभी तक हमने नाम को प्राप्त नहीं किया है, हम चार नियमों का बराबर से पालन नहीं कर पाते हैं, हमारा मन हमारे वश में नहीं है, फिर भी हम लोग इस प्रकार से बात करते हैं कि सारे लोग मिथ्या है, ये योगी, ये ज्ञानी, और हम इसमें जो आचार्य हैं उनके शब्दों को दोहराकर यही समझते कि हमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। जैसे प्रभुपाद जो विज्ञान वैज्ञानिक है उनको रास्कल बता देते, दे रास्कल, बहुत सारे प्रभुपाद यूज टू यूज दिस वर्ड वेरी कॉमन, रास्कल। रास्कल मतलब चीटर, जो चीटिंग करता है। लेकिन हम लोग अगर इस प्रकार का शब्द प्रयोग करने को जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं है। हमें लोगों से नम्रतापूर्वक ही स्वभाव, नम्रतापूर्वक स्वभाव से रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति का यही मार्ग है। भक्ति का एक ज्ञान है और भक्ति का एक मार्ग है। हम लोग ज्ञान के कारण सारे लोगों को तुच्छ समझकर अगर इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो भक्ति हमारे से कहीं दूर रहे। प्रभुपाद साफ साफ बताते हैं कि भक्ति इज नॉट अबाउट स्कॉलरशिप। किसी प्रकार का विद्वत्ता का और भक्ति का कोई संबंध नहीं है। भक्ति ये एक हृदय की बात है। हमारे हृदय में कौन से गुण है, भगवान भी साफ साफ कहता है। क्या कह रहे हैं भगवान, ये नहीं बताते कि जिसने सारे श्लोक जानता है, जो अलग अलग प्रकार के मंत्र तंत्र जानता है और यज्ञ कर सकता है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है, ऐसे नहीं भगवान बता रहे। भगवान केवल ऐसे लोगों को बता रहे हैं प्रिय, जो कि भक्तों के गुणों से संपन्न है। 12वां अध्याय, भगवान भगवद्गीता का 12वां अध्याय में ऐसे सारे जो वर्णन है, कौन सा व्यक्ति मुझे प्रिय है, जो दूसरों का द्वेष नहीं करता, जो दूसरों को समत्व से देखता है, जो नम्र रहता है, दूसरों के ऊपर दया करता है, ये सारे गुण बताए हैं। उसमें कहीं पे भी एक लिखा नहीं कि उसको भगवद्गीता के 750 श्लोक आते हैं या भागवतम के 18,000 श्लोक आते हैं, कहीं पर भी लिखा नहीं है। केवल गुणों का वर्णन है। ये गुण हमारे हृदय में कैसे आएंगे, क्योंकि हम इस संसार में जन्म लिए वो अहंकार के कारण। ये गुणों को प्राप्त करना और उस गुण के आधार पर जब हम भक्ति का मार्ग करेंगे तो हमारी भक्ति यशोदा माँ की भक्ति की तरह यशस्वी हो जाएगी। इसलिए ये भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए रूप गोस्वामी हम बताते हैं, अदव श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। पहले तो हमारे मन में थोड़ी श्रद्धा आनी चाहिए, फिर साधुओं का संग होना चाहिए, जो शुद्ध भक्त है खास करके उनकी, उनको ढूंढ के निकालना चाहिए, और फिर भजन क्रिया करनी चाहिए। भक्तिनाथ ठाकुर इस भजन क्रिया को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं कि भजन क्रिया किस प्रकार के कौन से मूड में होने चाहिए। कि हम लोग सब लोग भजन क्रिया कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन उसका मूड क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हम भजन क्रिया करेंगे तो यशस्वी होंगे। तो जैसे हमारे शिक्षाष्टकम के जो 8 श्लोक है, उसी प्रकार से यादव श्रद्धा तथा साधु संग, ये भी 8 है। तो तीसरा जो है भजन क्रिया का आता है नंबर, उसके साथ साथ भक्तों वगैरह, उसके लिए क्या चाहिए, कौन सी योग्यता चाहिए, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुता अमानेन मानदेन कीर्तनेन सदा। भगवान के नाम का तब आप जप कर पाओगे निरंतर, जब हृदय में ये भावना होगी कि मैं तृण से भी तुच्छ हूं, तुच्छता का भाव। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुता, एक पेड़ वृक्ष इससे भी हमें अधिक सहनशील बनना चाहिए। हमारे लिए बातें सारी काल्पनिक लगती है, ऐसे कैसे संभव है, ऐसे लगता है। पेड़ को आप देखेंगे, पेड़ की सहिष्णुता क्या है, पेड़ को कोई काट रहा है, कोई जला रहा है, कोई उसके पत्ते तोड़ रहा है, कोई फूल तोड़ रहा है, कुछ भी करो उसका कोई संघर्ष नहीं है। ऐसे हम कर सकते हैं क्या, तरोरपी सहिष्णुता बन सकते हैं, प्रयास करना चाहिए। कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि मेरी ये योग्यता नहीं है, इसलिए मैं दूसरों के बारे में बात नहीं करूंगा। तरोरपी सहिष्णुता अमानी मान दे रहा हूं, जो मुझे सम्मान नहीं दे रहा है उसको भी मैं सम्मान दूंगा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब कोई भक्त सामने से आता है, हर दिन हम उसको प्रणाम करें, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, किसी दिन उस भक्त ने आपने हरे कृष्ण के लिए उसने देखा ही नहीं, क्या लगता है आपको हृदय में क्या होता है? होता है ना कुछ? जब तक कोई होता है तब तक हम लोग अभी तक बहुत नीचे है। मान न मान देना कीर्तन या सदा हरे, इस प्रकार के जो गुण है इनको हम प्राप्त करके जब कीर्तन या सदा हरे भगवान के काम काज में लग जाएंगे, उनका नाम लेंगे, उनकी सेवा करेंगे और ऐसे आगे जाएंगे, तब हम कृष्ण को पकड़ सकते हैं, ना कि हम केवल भक्त बन गए। क्यों बन गए भक्त? क्योंकि हम तिलक लगा सकते हैं, कंठी माला पहन सकते, धोती पहन सकते, कुर्ता पहन सकते हैं, है कि दो चार श्लोक भी बोल सकते हैं। ये भक्ति की केवल शुरुआत है। जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर होता है, वो जैसे ही पहले साल में घुस जाता है कॉलेज में तो उसको डॉक्टर बोलना शुरू कर देते लोग, जैसे हम लोग को भक्त बोलना शुरू कर देते लोग, लोग प्रभु जी बोलते हैं, महान है ऐसे बोलते हैं, प्रचारक बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के संबोधन। लेकिन अगर वो पहले साल वाला स्टूडेंट विद्यार्थी अगर वो सोचे मैं भी डॉक्टर बन गया, मैं भी किसी को भी ट्रीटमेंट दे, सबको मार डालेगा वो। उसको समय है, उसको दो चार साल पांच साल पूरी पढ़ाई पर करने के बाद में किसी बड़े डॉक्टर के देखरेख के में और सीखना चाहिए कि कैसे दवा देनी जाती। मैं जानता तो वो दवा, लेकिन कैसे देनी चाहिए, ऐसा करेगा तभी वो डॉक्टर बनता है। उसी प्रकार से भक्ति का ज्ञान आने से हम लोग भक्त नहीं बन सकते हैं। हमें ज्ञान हो गया भक्ति क्या है, हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हम भक्ति में आ गए, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन सा होगा कि हम भक्ति में आने के बाद में इस दो प्रकार के अहंकार में फंस जाते हैं। भगवान को सस्ता मानना, छोटा मानना, और उसके कारण भगवान को सस्ता मानना तो मतलब क्या है, कोई भी सोचता है। प्रभुपाद गाली देते थे जब लोग बोलते कि राधे राधे श्याम मिला दे, तो बोलते राधा रानी क्या तुम्हारे बाप के नौकर है, शाम को लेके आए, कुछ कार्य करो, भक्ति करो, उसके बाद में बात करो। तो ये दोनों चीजों से हमें बचना चाहिए, तब जाकर हम भक्ति में स्थित हो जाएंगे। असल में जो अत्यंत उदात्त ऐसे बड़े भक्त हैं उनके गुण अलग ही हैं। वो भक्त उस स्तर के बनने के बाद भी इन गुणों को कभी छोड़ते नहीं। त्रिनाद अभी सुने चले, ये सारे जो नम्रता के गुण हैं ये कभी छोड़ते नहीं है। जैसे हम देखें प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के सामने जब नरसिंह भगवान खड़े थे, नरसिंह भगवान उनके सामने सारे देवता है, वहां हिरण्यकश्यप मरा पड़ा हुआ है और सब लोग समझ मर गया अभी तो चुप हो जाओ, चुप हो देंगे, बहुत बड़ी दहाड़े मार रहे हैं, सारा संसार भयभीत है। किसके कारण? नरसिंह भगवान के दहाड़ों से। अभी वहां ब्रह्मा जी वो भी कुछ कर नहीं सकते, वो बोल रहे क्या करे अभी, इनको कौन चुप करेगा। लक्ष्मी जी को बोलते कि आप कुछ बोलो, आपके पति हैं, बोले मैं भी जानती नहीं इनको, ये कुछ अलग ही, आज का स्वभाव कुछ अलग है, रूप ही कुछ अलग है। सब लोग किसको देखते हैं? प्रहलाद को। प्रहलाद आप जाओ, आप आपके वजह से आए हैं, आप जाओ, आप कुछ बोलो। प्रहलाद बहुत शांत चित्त से भगवान के पास, भगवान उनको आलिंगन देते, पकड़ लेते, अपने पैरों पर बिठाते हैं, काटते हैं, और प्रहलाद उनके स्पर्श से पूरी तरह से अंतर बाह्य शुद्ध हो जाते हैं। पहले से शुद्ध थे लेकिन और शुद्ध हो जाते हैं, और उस शुद्ध अवस्था में वो क्या बोलते हैं कि मुझे आपकी कृपा इसलिए प्राप्त होगी क्योंकि मैंने आपके शुद्ध भक्त से नारद मुनि की शरण ग्रहण की। देखो उस समय उन्होंने सोचा नहीं कि ये नारद मुनि ब्रह्मा जी इनको तो ये भी भक्त है, मैं जानता हूं ये भक्त है, लेकिन मैं देखो कितना बड़ा भक्त हूं कि मेरी वजह से भगवान आ गए, और ये सब लोग डर रहे लेकिन मैं डर नहीं रहा हूं। ये भक्ति है। भक्ति में जो अंदर के आत्मा के जो गुण है बहुत स्वाभाविक है और यही भगवान को प्रिय है। ध्रुव महाराज उनको साक्षात वैकुंठ लोक से विमान लेने के लिए आए। जब वो विमान में बैठ रहे हैं तभी वो केवल एक ही बात सोच रहे हैं कि आज मैं इस विमान में बैठने के योग्य किस लिए हो गया, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कुछ निर्देश दिया था। मेरी माँ जो मेरी प्रथम शिक्षा गुरु पथ प्रदर्शक गुरु थी वो कहाँ है, और इस बात को समझते हुए विष्णुदूत क्या बोलते हैं, आप देखो वो दूसरा विमान जा रहा है उसमें माँ को हम पहले से ही लेके जा रहे हैं, आप चिंता मत करो। ये सब बोलने मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भक्त जितना उच्च हो जाता है, भक्ति विनोद ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिनके ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, ऐसे भक्त आपको कभी किसी का निंदा करते समय दिखेंगे नहीं, कभी अपने आप को महान बोलेंगे नहीं। असल में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते कि अगर कोई मेरा नाम भी सुनता है उसके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, ये उसकी खुद की नम्रता। और हम लोग जिसका नाम लेने से शायद सही में पुण्य खराब हो जाते हैं, वो सोच रहे कि हम दूसरों को उपदेश कर सकते हैं या दूसरों की निंदा कर सकते हैं, बोले ये सब तुच्छ है, योगी ज्ञानी नहीं। हर जीव के प्रति हमारे हृदय में नम्रता का भाव होना चाहिए, रिस्पेक्ट मान सम्मान का भावना होना चाहिए। अगर इस प्रकार के जो गुण हैं उस आधार पर हम जब भक्ति करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, तो यश निश्चित है। फिर पक्का है कि आपने आप बिल्व मंगल ठाकुर की तरह कृष्ण को बंदिस्त बना सकते हो, यशोदा माई की तरह आप कृष्ण को डरा सकते हो। आप देखो कृष्ण को कौन डरा सकता है, लेकिन यशोदा माई डरा सकती है और सही में डर जाते हो, रोते हैं आंखें मसल मसल कर, ये भक्ति की महानता है। तो ये भक्ति की महानता है, अपनी महानता नहीं है। तो इसीलिए हमें जो व्रजवधु या जो गोपी है उनके पदचिन्हों पर चलकर, उनका पदचिन्ह चलना मतलब क्या है कि भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि, उनको ज्ञान से कर्म से कोई लेना देना नहीं है, केवल एक अभिलाषा भगवान की सेवा। भगवान को सरदर्द हो रहा है, किसी भक्त के पैरों की धूल चाहिए, सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण नकार देते हैं, लेकिन गोपियां उनको जब पता लगे भगवान को सरदर्द है और हमारे पैरों की धूल लेने से उनका सरदर्द कम हो जाएगा, तो भर भर के उसको धूल दे देते। नारद मुनि बोलते अरे आप लोगों को मालूम नहीं, आपके चरण कमलों की, आपके चरणों की धूली अगर भगवान के माथे पे जाएगी क्या होगा, बोला हम जानते हैं हम नरक में जाएंगे, उसमें क्या, हमें उसकी कोई परवाह नहीं, हमारा इतना ही इच्छा है कि भगवान का सरदर्द कम हो, ये योग्यता है। और इसी प्रकार ये बहुत बड़ी बातें हम लोग कर रहे हैं, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन इन बातों से हम समझ सकते हैं कि इनकी भावना क्या होती है, और उस भावना को ध्यान में रखते हुए कभी भी उनकी नकल नहीं करना चाहिए, कभी भी आचार्यों की नकल नहीं करना चाहिए। हमें भगवान की साधना भक्ति में भजन क्रिया में तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सही सुना, हमें माने देना चाहिए, इसी भावना से आगे चलते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।